संभव काफी देर से नहा रहा था। जब घाट पर आया तो मंगल पंडा बोले,
कहो जजमान, बड़ी देर लगाए दी, हम तो डर गए थे।
संभव हंसा, उसके एक सार खूबसूरत दांत सांवले चेहरे पर फब उठे। उसने लापरवाही से कपड़े पहने और जांघिया निचोड़कर थैले में डाला। जब वो कुर्ते से पूंछकर चश्मा लगा रहा था, पंडे ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाने को हाथ बढ़ाया। उसने चेहरा हटा लिया तो मंगल पंडा ने कहा,
चंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा होता है बेटा।
संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया। वो वापस सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज लगाई,
अरे दर्शन तो करते जाओ।
संभव ठिठक गया। उसकी इन चीजों में नियमित आस्था तो नहीं थी, पर नानी ने कहा था,
मंदिर में 20 आने चढ़ा कर आना।
संभव ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला, 1 रुपए का नोट तो मिल गया। चवन्नी के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ा, चवन्नी जेब में नहीं थी। संभव ने थैला खखोरा, पुजारी ने उसकी परेशानी ताड़ ली।
इधर आओ, हम दे रेजगारी।
संभव ने झेपते हुए 1 का नोट जेब में रखकर 2 का नोट निकाला। पुजारी जी ने चरणामृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। संभव का ध्यान कलाई की तरफ नहीं था, वो गंगा जी की छटा निहार रहा था। तभी एक और दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ाई। पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया। उस हाथ ने थाली में 5.25 रुपए रखे। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी आंख मूंद कर अर्चन कर रही थी। संभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहां तक कि उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। दीपकों के नीम उजाले में, आकाश और जल की सांवली संधि बेला में, लड़की बेहद सौम्य, लगभग कांस्य प्रतिमा लग रही थी। लड़की ने कहा,
पंडित जी, आज तो आरती हो चुकी, क्या करें, हमें देर हो गई।
पुजारी ने उत्साह से कहा,
इससे क्या, हम यहां कराए दें, का कराना है, संकल्प, कल्याण मंत्र, आरती, जो कहो।
नहीं, हम कल आरती की बेला आएंगे, लड़की ने कहा।
संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी उसे 75 पैसे लौटाए, लेकिन पुजारी भूल चुका था। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लिया और कि उसके मुंह से अनायास आशीष निकली,
सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरी करें।
लड़की और लड़का दोनों अकबक आ गए। लड़की छिटक कर दूर खड़ी हो गई, लड़के को तुरंत वहां से चल पड़ने की जल्दी हो गई। शायद उनकी चप्पलें एक ही रखवाले के यहाँ रखी हुई थी। टोकन देकर चप्पलें लेते समय दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गईं। आंखों का चकाचौंध अभी मिटा नहीं था। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था,
देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया।
लड़की कहना चाहती थी, आपको इतने पास नहीं खड़ा होना चाहिए था। लड़की ने अपना होठ दांतों में दबाकर छोड़ दिया। भूल तो उसी की थी, बाद में तो वही आई थी। अंधेरे से घबरा कर कहां कितनी पास खड़ी हुई उसे कुछ खबर नहीं थी, लेकिन बातचीत के लायक दोनों की मन स्थिति नहीं थी, पहचान भी नहीं। दोनों ने नजरें बचाते हुए चप्पलें पहनी। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पल पहन नहीं पाई, थोड़ी सी अंगूठे में अटका कर ही आगे बढ़ गई। संभव ने आगे लपक कर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई। वो घाट की भीड़ को काटता हुआ सब्जी मंडी पहुंच गया। हर की पौड़ी और सब्जी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलियां थीं। लड़का देख नहीं पाया लड़की कहां ओझल हो गई। नानी का घर करीब आ गया था, लेकिन लड़का घर नहीं गया। वो वापस अनदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा। उसने चूड़ी की समस्त दुकानों पर नजर दौड़ाई। हर दुकान पर भीड़ थी, पर एक भीगी गुलाबी आकृति नहीं थी। आखिर भटकते भटकते संभव हार गया। पस्त कदमों से वो घर की ओर मुड़ा। नानी ने द्वार खोलते हुए कहा,
कहाँ रह गए थे लल्ला? मैं तो जी में बड़ी कांप रही थी, तुझे तो तैरना भी ना आवे, कहीं पैर फिसल जाता तो मैं तेरी माँ को कौन मुंह दिखाती।
संभव कुछ नहीं बोला, थैला तख्त पर पटक पैर धोने नल के पास चला गया। नानी बोली,
ब्यालू कर ले।
संभव फिर भी नहीं बोला। नानी की आदत थी एक बात को कई कई बार कहती। संभव तख्त पर लेट गया। नानी ने कहा,
थक गया ना? अरे तुझे मेले ठेले में चलने की आदत थोड़े ही है, कल बैसाखी है इसीलिए भीड़ बहुत बढ़ गई है। अभी तो कल देखना, तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी पौड़ी पर। चल उठ, खाइबे को खा ले, मुझे भूख नहीं है,
संभव ने कहा और करवट बदल ली।
अरे क्या हो गया, स्नान के बाद भी भूख ना चमकी? तभी ना इतनी सीख सलाई दी है। मैंने सविता से पहले ही कही थी, इसे अकेले न भेज, यहां जीना लगे इसका।
नानी पास खड़े खटोले पर अधलेटी हो गई। उम्र के साथ साथ नानी की काया इतनी संक्षिप्त हो गई थी कि वे फैल पसर कर सोती तो भी उनके लिए खटोला पर्याप्त था, पर उन्हें सिकुड़ कर गठरी बनकर सोने की आदत थी। गंगा को छूकर आती हवा से आंगन काफी शीतल था। ऊपर से नानी ने रोज की तरह शाम को चौक धो डाला था। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर आई। लड़की का आंख मूंद कर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता उसका गुलाबी आंचल और पुजारी से कहता उसका सौम्य स्वर, हम कल आएंगे। संभव की आंख खुल गई। ये तो वो भूल ही गया था, लड़की ने कल वहां आने का वचन दिया था। संभव आशा और उत्साह से उठ बैठा। नानी को झकझोरते हुए बोला,
नानी नानी चलो खा लें, मुझे भूख लगी है।
नानी की नींद झूले के समान थी, कभी गहरी कभी उथली। उथले झोटे में उन्होंने देवते की सुधाई, फिर रसोई से थाली उठा लाई। संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया।
वाह नानी, क्या आलू टमाटर बनाया है, माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती। ककड़ी का रायता तो मुझे बहुत पसंद है।
खाते खाते संभव को याद आया, आशीर्वचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। वो कौर हाथ में लिए बैठा रह गया। उसकी आंखों के आगे कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य घूम गया। पुजारी का वो मंत्रोच्चार जैसा पवित्र उद्गार,
सुखी रहो, फलो फूलो, सारे मनोरथ पूरे हों, जब भी आओ साथ ही आना,
लड़की का चिहुकना, छिटक कर दूर खड़े होना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से न पहन पाना और आगे बढ़ जाना। संभव ने विचलित स्वर में कहा,
मुझे भूख ना है, मैं तो यूं ही उठ बैठा था।
सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल एमए पूरा किया था। अब वो सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था वो हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था।